कमरे में हवा जैसे अचानक भारी हो गई। शामली की पीठ दीवार से लगी थी और सामने विश्वनाथ, इतना करीब कि उसकी हर सांस सीधे उसके भीतर उतरती महसूस हो रही थी। उसकी धड़कनें अब सिर्फ तेज नहीं थीं, बेतरतीब थीं, जैसे दिल को भी समझ नहीं आ रहा हो कि उसे रुकना है या और तेज धड़कना है। विश्वनाथ की सांसें गर्म थीं, बहुत गर्म। वो जितना करीब आता जा रहा था, शामली उतनी ही बेचैन हो रही थी। उसके कंधे दीवार से सटे थे, उंगलियां अनायास मुट्ठी में बंद होती जा रही थीं, आंखें झुकी थीं, लेकिन हर इंद्रिय जागी हुई थी। सांस रोक लोगी क्या? विश्वनाथ की आवाज़ हल्की थी, लेकिन उसमें दबा हुआ कुछ और था, जो आवाज़ से ज़्यादा उसके लहजे में महसूस हो रहा था। शामली ने होंठ फींच लिए। आप ऐसे पास मत आइए, आवाज़ में शिकायत कम, डर ज़्यादा था। डर नहीं, उलझन। विश्वनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस थोड़ा और झुक गया। अब उसके और शामली के बीच सिर्फ कुछ इंच का फासला था। उसकी सांस शामली के गाल से टकराई। शामली की पलकों में हल्की सी झंझनाहट दौड़ गई। दो दिन, विश्वनाथ ने धीमे से कहा। इन दो दिनों में क्या तुमने मुझे याद किया? ये सवाल नहीं था, ये सीधा दिल के बीच रखा गया एक पत्थर था। शामली का सीना और तेज उठने गिरने लगा। उसने तुरंत सिर झटका, जैसे जवाब पहले से तैयार हो। नहीं, उसने कहा, और मैं क्यों आपको याद करती? उसकी आवाज़ थोड़ी सख्त होने की कोशिश कर रही थी। हमारे बीच है ही क्या? ये शब्द कमरे में गिरे नहीं, चुप गए। विश्वनाथ की आंखों में कुछ बदल गया। वो ठहराव जो अब तक था, एक पल में सख्ती में बदल गया। उसने दीवार पर टिके अपने हाथ और पास कर लिए। अब शामली पूरी तरह उसके घेरे में थी। कुछ भी नहीं, उसकी आवाज़ में हल्की सी कड़वाहट उतर आई। वाकई? शामली ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं और यही जवाब था। तो फिर ये क्या है? विश्वनाथ ने झुककर कहा। ये जो तुम सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही हो, ये क्या है? शामली ने आंखें बंद कर ली। उसके भीतर कुछ टूट रहा था। आप गलत समझ रहे हैं, उसने धीमे से कहा। ये बस आदत है आपकी। ये बात विश्वनाथ को और भड़का गई। उसके जबड़े कस गए। उसकी आवाज़ अब पहले जैसी शांत नहीं थी। आदत? उसने लगभग तंज में दोहराया। तो आदतें ऐसे कांपती नहीं हैं शामली। उसने एक हाथ दीवार से हटाया। शामली का दिल जैसे गले तक आ गया, लेकिन उसने उसे छुआ नहीं। बस इतना करीब आया कि शामली को लगा अगर वो ज़रा सा भी हिली तो खुद से टकरा जाएगी। मेरे सामने खड़ी हो, विश्वनाथ ने कहा, और ये कहो कि तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। शामली ने आंखें खोली, नजरें मिली, और उसी पल उसका झूठ बिखर गया। उसकी आंखों में डर नहीं था, उलझन थी, इच्छा नहीं, तड़प थी। मैं, उसकी आवाज़ कांप गई, मैं बोल नहीं पा रही, यही सच है। विश्वनाथ की सांस तेज हो गई। क्यों? उसने तुरंत पूछा। क्यों नहीं बोल पा रही? शामली ने होंठ काट लिए। क्योंकि अगर बोला तो शायद रुक नहीं पाऊंगी। ये सुनते ही विश्वनाथ का सब्र टूट गया। वो अचानक और पास आया। उसका माथा लगभग शामली के माथे से लग गया। सांसें टकराईं, गरम, उलझी हुई, बेकाबू। तुम मत रोको, उसकी आवाज़ अब दबे हुए गुस्से और बेचैनी का मिश्रण थी। दो दिन मैं वहां था और यहां तुम। शामली की धड़कन जैसे कानों में गूंजने लगी। मैंने हर रात सोचा, विश्वनाथ ने कहा, कि जब लौटूंगा तुम ऐसे ही भागोगी। उसकी आंखें शामली की आंखों में थीं। और तुमने? शामली की पलकें भीग गईं। मैंने हर आवाज़ में आपको ढूंढा, उसने बहुत धीमे से कहा, लेकिन मानने से डर गई। ये सुनकर विश्वनाथ की सख्ती एक पल को डगमगाई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। डर से रिश्ते नहीं टूटते, उसने कहा, झूठ से टूटते हैं। शामली का सिर झुक गया। मैं झूठ नहीं बोल रही थी, उसने कहा, बस खुद से लड़ रही थी। कमरे में एक गहरी खामोशी उतर आई। विश्वनाथ ने धीरे धीरे सांस ली, फिर एक कदम पीछे हटा। शामली चौंकी, जैसे अचानक संतुलन बिगड़ गया हो, लेकिन उसके अगले शब्द और ज्यादा असरदार थे। लड़ लो, उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। उसने एक पल रुककर जोड़ा, लेकिन भागना बंद करो। शामली की आंखों से एक बूंद गिरी। वो दीवार से हटकर सीधी खड़ी हुई। दोनों के बीच अब थोड़ा फासला था, लेकिन दिलों के बीच नहीं। हवेली के बाहर आवाजें थीं, जीवन चल रहा था, और इस कमरे में दो लोग अपने अपने सच के बहुत करीब खड़े थे। ये अभी स्वीकार नहीं था, ये इजहार नहीं था, ये बस एक शुरुआत थी जो अब टाली नहीं जा सकती थी। सुषमा देवी के कमरे में इस वक्त हल्की सी पीली रोशनी थी। पुरानी मेज पर रखा लैंप दीवारों पर पड़ती परछाइयों को और गहरा बना रहा था। बाहर आंगन की आवाजें अब धीमी पड़ चुकी थीं, जैसे हवेली भी इस कमरे की खामोशी का लिहाज कर रही हो। बिस्तर के सिरहाने, तकियों के सहारे रत्ना देवी और सुषमा देवी साथ बैठी थीं। दोनों की पीठ दीवार से टिकी थी, उम्र की थकान उनके कंधों पर साफ दिखती थी, लेकिन आंखों में अब भी बहुत कुछ बचा हुआ था, यादें, कसक और वो रिश्ते जो वक्त से हार मानने को तैयार नहीं होते। रत्ना देवी ने थोड़ी देर तक सुषमा देवी के चेहरे को देखा, फिर धीरे से बोली, दीदी, महेश जी को गुजरे 4 साल हो चुके हैं। आवाज में नसीहत नहीं थी, बस अपनापन था, लेकिन आप आज भी उन्हें बहुत याद करती हैं। सुषमा देवी ने नजरें सामने टिकी दीवार पर जमा दी, कुछ पल चुप रही, फिर हल्की सी मुस्कान उनके होंठों पर आई, जो मुस्कान कम दर्द की आदत ज्यादा लगती थी। रत्ना, उन्होंने धीमे से कहा, कोई मर जाए इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी जिंदगी से चला जाए। उनकी आवाज में ठहराव था। वो आज भी मेरे लिए जिंदा है, हर सुबह हर रात। रत्ना देवी ने सिर झुका लिया, जैसे ये जवाब वो पहले से जानती थी। सुषमा देवी ने अब उनकी तरफ देखा, और तुम, उन्होंने पूछा, तुम भी कहाँ राजेंद्र को भूली हो? ये सवाल नहीं था, आईना था। रत्ना देवी की उंगलियां साड़ी के पल्लू में उलझ गईं, आंखें कुछ पल के लिए नम हो गईं। भूलना, उन्होंने धीमे से दोहराया, कुछ रिश्ते भुलाए नहीं जाते दीदी, बस उनके साथ जीना सीख लिया जाता है। कमरे में एक गहरी खामोशी उतर आई। सुषमा देवी ने हल्की सी सांस ली। याद है, उन्होंने कहा, राजेंद्र पहली बार इस हवेली में आए थे? रत्ना देवी के चेहरे पर एक हल्की सी चमक उभरी। हाँ, उन्होंने कहा, उसे लगता था दुनिया बस उनके इरादों से चलती है। सुषमा देवी हल्का सा हंसी, और मुझे लगता था कि मैं सब संभाल लेंगी। वो हंसी कुछ सेकंड ही टिक पाई, फिर से गंभीरता लौट आई। कभी कभी सोचती हूँ, सुषमा देवी ने कहा, अगर वो आज होते तो शायद बहुत कुछ अलग होता। रत्ना देवी ने उनकी तरफ देखा, या शायद, उन्होंने धीरे से कहा, सब वैसा ही होता, बस दर्द का नाम कुछ और होता। सुषमा देवी ने कुछ नहीं कहा, बस सिर पीछे टिकाकर आंखें बंद कर ली। दोनों बहनें यूं ही बैठी रहीं, बीते समय की उसी जगह पर, जहां से लौटना आसान नहीं होता। हवेली के किसी कोने से किसी दरवाजे के बंद होने की आवाज आई। वक्त आगे बढ़ रहा था, लेकिन इस कमरे में अतीत अभी भी बैठा हुआ था।